मुझे बताया गया कि कानून की अदालत में होशियार वकील कभी ऐसा सवाल नहीं पूछते जिसका जवाब उन्हें खुद पता ना हो। दरअसल कुछ चालाक लोग सवाल का जवाब देने से बचने के लिए सवाल का जवाब सवाल की सूरत में देते हैं। मैंने एक जोड़े के बारे में पढ़ा, जब भी शौहर बीवी से कोई सवाल पूछता उसका जवाब हमेशा एक नए सवाल की शक्ल में होता। उसके साथ तवील अरसे तक ऐसा होता रहा, आखिर वो जिद छोड़ गया। उसने नाराजगी में कहा, क्या तुम्हें हमेशा मेरे सवाल का जवाब सवाल में ही देना होता है? बीवी ने कहा, वाकई मैंने ऐसा किया। बाइबल में आप बहुत से अहम सवालात देखते हैं। ये सवालात खुदा की तरफ से पूछे गए और खुदा कोई ऐसा सवाल नहीं पूछता जिसका वो जवाब ना जानता हो, क्योंकि खुदा सब जानता है। दरअसल हर मामले में खुदा ये सवाल हम इंसानों से राबते के जरिए के तौर पर करता है, ताकि हम हकीकत का सामना करने वाले हों और सच का सामना करें। आज मैं उन्हीं चंद सवालों का जिक्र करूंगा जो खुदा अपने कलाम में पूछता है। लेकिन एक सवाल है जो हर एक के लिए जो कभी भी इस जमीन पर रहा इन तमाम सवालों से बढ़कर अहम है, हर इंसान के लिए, भले वो यहां है या हमें वो घर पर देख रहा है, जरूर इस सवाल का जवाब दे। ये जिंदगी का अहम तरीन सवाल है और यसु ये सवाल मरकज 60वें बाब की 36वीं और 37वीं आयत में हमसे पूछता है, और देखें वो यहां पर क्या कह रहा है। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा, और आदमी अपनी जान के बदले क्या दे? ये अहम तरीन सवाल है जिसका हम में से हर एक को जिंदगी में सामना करना है और जवाब देना होगा। ये उनमें से एक नहीं बल्कि अहम तरीन सवाल है, और सोचें क्या है, सिर्फ यसु ही ये सवाल पूछ सकता है, कोई दूसरा नहीं। एक खादिम यह सवाल नहीं पूछ सकता, ना कोई काहिन यह सवाल पूछ सकता है, ना कोई बिशप यह सवाल पूछ सकता है, ना ही पोप यह सवाल पूछ सकता है। सिर्फ यसु ही है जो यह सवाल पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ यसु ही कुराए अर्ज की कदर जानता है। आखिर वो इसका खालिक है, और इसीलिए यसु ही दुनिया की तमाम दौलत का ढेर लगा सकता है। दुनिया के तमाम खजाने, दुनिया की तमाम दौलत तराजू के एक तरफ और फिर तराजू की दूसरी तरफ इंसान को रखता है, और वो कहता है सिर्फ अकलमंद शख्स ही है जो दुनिया की तमाम दौलत के बदले अपनी जान का सौदा करने से इनकार करेगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा, अपनी जिंदगी के बदले इंसान क्या दे सकता है? सिर्फ यसु ही कुरा अर्ज पर कभी भी रहने वाले हर इंसान से यह सवाल पूछ सकता है, आखिर उसने हमें तखलीक किया है। सिर्फ यसु ही इंसानी जान की कदर को जानता है। उसके लिए इंसानी जान इतनी अहम है कि उसने आसमान के हशमत और जलाल को छोड़ा और इंसान बन गया। ये इंसानी जान की कदर ही है कि कुल कायनात का खालिक बेघर और गरीब बन गया, और उसने खून बहाया और मार खाई, हत्ता कि उसका जिस्म बेहाल हो गया, चांटे मारे गए, हत्ता कि उसका जिस्म काला और नीला हो गया, तमस्कर उड़ाया गया। ये आपकी जान की कदर है कि खुदा की कुदरत और अजमत बे यारो मददगार सलीब पर लटके और फिर तीसरे दिन जी उठे। लेकिन सवाल जो 2000 साल से ज्यादातर लोगों से पूछा गया, ये कोई नया सवाल नहीं है। 2000 साल से लोग ये सवाल पूछते हैं, क्यों? आखिर क्यों खुदा ने आसमान की शान और शौकत को छोड़ा और इंसान बन गया? क्यों खुदा ने आसमान ही से क्यों ना कह दिया, लोगों सुनो, अपना बेहतरीन करने से मुझ तक पहुंचने की कोशिश करो, बुराई की बजाय अच्छाई के जरिए मुझे खुश करने की कोशिश करो। जैसा कि अक्सर लोग सोचते हैं खुदा के मुतालिक उनका यही तस्वुर है, वो चाहते हैं कि खुदा ने ऐसा ही किया होता। वो नहीं समझते खुदा ने आसमान क्यों छोड़ा, इस जमीन पर आया, गरीबों से ज्यादा गरीब बना, सलीब पर मुआ और दोबारा जिंदा हुआ, वो ये नहीं समझते। वजह ये है कि हम इंसान चीजों को अपने नुक्ते नजर से देखना चाहते हैं, खुदा के नुक्ते नजर से नहीं देखना चाहते। और आज आपके लिए सबसे अहम बात यह है कि चीजों को खुदा के नुक्ते नजर से देखें, ना कि अपने नुक्ते नजर से। मसला यह है खुदा कामिल है और सिर्फ कामिल लोग ही कामिल खुदा तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ कामिल लोग ही उसके आसमान में दाखिल होते हैं। हमारे हाथ एक बात आ गई है, हम में से कोई कामिल नहीं, कोई कामिल नहीं हो सकता, और खुदा का तकाजा यही है। लेकिन सिर्फ खुदा ने इसका जवाब दिया, सिर्फ खुदा ने इसका हल पेश किया। कामिल खुदा सलीब पर चढ़ाया गया उन सब के गुनाहों के लिए जो उसके पास आए और उससे मुआफी हासिल करें और उससे अपना निजात दहिंदा कबूल करें और खुदा बाप की नजर में कामिल बने। सिर्फ यही एक रास्ता है, खुदा ने इसी तरह यह किया। अब अगर आप मेरी तरह हैं, यकीनन आपने इसके मुतालिक वो झूठा बयान सुना होगा जो अक्सर लोग कहते हैं, असल में कुछ क्लीसिया लोगों के जरिए कहा जाता है। ये झूठा बयान क्या है? ये कुछ इस तरह है, तमाम रस्ते खुदा की तरफ जाते हैं, सही। तमाम मजाहिब बुनियादी तौर पर एक ही मंजिल के मुख्तलिफ रास्ते हैं, तमाम रास्ते आपको फिरदौस में ले जाएंगे। वाकई? या अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो वो बुराई को मिटा देगा और आप फिरदौस में चले जाएंगे। इन बयानात के साथ एक मसला है, ये झूठे हैं, खुदा ने कहा ये झूठे हैं, खुदा ने कहा यह सच नहीं, क्योंकि खुदा अपने कलाम में सफा ब सफा कहता है सिर्फ एक ही मंसूबा है, सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही निजात दहिंदा है। और जैसा मैंने कहा, बाइबल के ये एक सवालात पूछती है कि हम हकीकत का सामना करें ताकि हम समझ के उस मुकाम तक पहुंचे और सच का रूबरू सामना करने वाले हों, ताकि वो फैसला कर सकें जो खुदा चाहता है कि हम करें। उनमें से एक सवाल पैदाइश तीसरे बाब की नौवीं आयत में है। दरअसल ये पहला सवाल है जो खुदा ने हमारे पहले बाप आदम से पूछा। देखिए खुदा ने आदम से क्या पूछा, उसने कहा तू कहां है, तू कहां है। खुदा के हुक्म की नाफरमानी के बाद आदम खुदा से छुप रहा था, वो सोच रहा था वो खुदा से छुप सकता है। अहम चीज यह है, गौर से सुने, खुदा आदम को झिड़क सकता था, खुदा उसे डांट सकता था, खुदा कुछ भी कर सकता था, वो खुदा है, सही। खुदा आदम को रद्द करके कह सकता था, बेवकूफ क्या तू नहीं जानता मैं सब कुछ देख सकता हूं, क्या तू नहीं जानता मैं सब जानता हूं। लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं किया। यह खुदा की अजमत है, यह खुदा की हशमत है। खुदा ने बस ये पूछा तू कहां है, तू कहां है। इसलिए नहीं कि खुदा नहीं जानता था आदम कहां है, यकीनन वो जानता था। खुदा ने यह सवाल आदम से इसलिए पूछा ताकि वो सच का सामना करे। और सुने, खुदा पूछ रहा है तुम कहां हो, तुम खुदा के लिए कहां खड़े हो, तुम खुदा से मोहब्बत के रिश्ते में कहां खड़े हो, जो तुम्हें पुकारता है और प्यार करता है, तुम कहां खड़े हो। खुदा ये सवाल क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप तौबा करें। उसने चाहा कि आदम अपने गुनाह का इकरार करे ताकि शायद वो मुआफ किया जाता, लेकिन इसके बरक्स आदम ने इल्जाम तराशी का खेल खेलना शुरू कर दिया। उसने ये किया, इसने ये किया, फिर उन्होंने इल्जाम तराशी शुरू कर दी और तब से हम इल्जाम तराशी का खेल खेल रहे हैं। खुदा ने चाहा कि आदम कहे हां खुदावंद, मैंने शैतान को मौका दिया कि मुझे वरगलाए और मैं तेरी नाफरमानी करूं। हां खुदावंद, मैंने झूठे नजरियात को मौका दिया कि मुझे गुमराह करे कि तू कौन है। हां मैंने मौका दिया खुदावंद और मैं मुआफी मांगता हूं, कुछ झूठे फलसफों ने मुझे तुझसे दूर रखा। हाँ हाँ खुदावंद, मैं मुआफी मांगता हूं कि मैंने ख्वाहिशात के बादल को मौका दिया कि तेरे बारे में मेरे तखैल को धुंधलाए और मेरे अजीजों, खुदा आज हम में से हर एक से पूछ रहा है, हम सबसे वो कह रहा है, तुम मेरे साथ रिश्ते में कहां खड़े हो? तुम कहां खड़े हो मेरे साथ रिश्ते में? क्या है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है कि तुम मुझसे भाग सकते हो? क्या चीज तुम्हें मेरे फिरदौस और मेरे फिरदौस की यकीन दहानी से दूर कर रही है? क्या चीज तुम्हें मेरे इत्मीनान और मेरी खुशी और मेरी मुआफी के तजुर्बे से दूर कर रही है, जो सिर्फ मेरे बेटे यस्सू के वसीले मुमकिन है? आज खुदावंद आपको बुलाता है कि उसके पास आए। खुदा तोबा की दावत देता है, खुदा दावत देता है कि अबदी मुआफी हासिल करें, दलीलें ना दें, वजाहतें पेश ना करें, क्योंकि वो सब देखता है, सब जानता है। क्या आप उसे जवाब देंगे? क्या आप जवाब देंगे? दूसरा सवाल जो पूछा गया, दरअसल ये बाइबल में पूछा गया दूसरा सवाल है, और ये पैदाइश की किताब के अगले बाब में है। बाइबल की पहली किताब पहला 3:9 में है और ये 4:9 में है। जब कायन ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया, तो उसके बाद खुदा ने कायन से ये सवाल किया। खुदा ने पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहां है? खुदा जवाब जानता था, खुदा ने ये होते देखा था। खुदा ने चाहा कि कायन अपने गुनाह का सामना करे, खुदा ने चाहा कि वो गुनाह का इकरार करे ताकि शायद बख्शा जाए, क्योंकि हमारा खुदा प्यार का खुदा है, लेकिन वो हमारे इकरार का इंतजार करता है। खुदा सब कुछ देखता है, वो सब जानता है, लेकिन ये सवाल आपको खुदा की फितरत के मुतालिक बताते हैं। खुदा ने जो सवाल कायन से किया, वही सवाल वो हमसे आज करता है, ताकि वो हमें तोबा करने का मौका दे और हम उसके हाथों से मुआफी हासिल कर सकें। शायद आप जहन में कह रहे हो, एक मिनट माइकल, उसने अपने भाई को कत्ल किया, मैंने कभी किसी को नहीं मारा, मैंने ऐसा कोई बड़ा गुनाह नहीं किया। देखें, आप खुदा की बजाय अपने नुक्ताए नजर से देखते हैं, खुदा के नुक्ताए नजर से कोई गुनाह छोटा या बड़ा नहीं होता, गुनाह गुनाह है। भले आप खुदा के म्यार को 1 इंच से खो दें या फिर 10 मील से, आपने म्यार खो दिया। देखिए, आप जो सफेद झूठ बोलते हैं वो खुदा को पुकारता है। जो पैसा आप लेते हैं वो आपका नहीं, आप अपना अकाउंट खर्च करते हैं, ये जो भी हो वो खुदा को पुकारता है। वो नफरत जिससे आप भरे हुए हैं और चाहते हैं कि कोई मर जाए, ये गुनाह खुदा को पुकारता है। और जब खुदा ये सवाल पूछता है, वो पहले ही इसका जवाब जानता है, लेकिन वो हमें तोबा का मौका देना चाहता है। वो चाहता है कि हम आजी के साथ उसके पास आए और कहें, खुदावंद यस्सू, मैं जानता हूं मैं गुनहगार हूं, मुझे तेरी माफी चाहिए। और वो कहता है, ठीक है, तुम्हें मिल गई। ये उसका वादा है, मैं नहीं कहता, ये उसकी किताब में है। और सिर्फ यस्सू मसीह की सलीबी मौत आपको ये मुआफी दिला सकती है। फर्ज करें यहां कोई अभी भी कह रहा हो, हाँ, लेकिन अभी तक मैं सोचता हूं खुदा को बड़े गुनाहों से सरोकार है, छोटे गुनाहों से कोई मतलब नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है, मैं जानता हूं कुछ सवाल सिर्फ यसु पूछ सकता है, लेकिन यह सवाल मैं पूछ सकता हूं, आदम का गुनाह क्या था कि उसे बागे अदन से निकाल दिया गया? क्या यह कत्ल था? उसने किसी को कत्ल नहीं किया, वहां दूसरी सिर्फ हवा थी और वह अभी तक जिंदा और सलामत थी। वो मुश्किल में पड़ी लेकिन जिंदा थी। क्या वो जना था? वहां कोई ना था जिसके साथ वो जना करता, वहां पर बस हवा थी और वो उसकी बीवी थी। तो वो क्या गुनाह था जिसके लिए आदम को बागे अदन से बाहर निकाला गया? और आज वही गुनाह हमें मिरास में मिला है, सिर्फ खुदा की नाफरमानी था। खुदा की नाफरमानी, उसके कलाम और मंसूबे की नाफरमानी, ये तमाम गुनाहों की जड़ है और तमाम गुनाह इस जड़ के फल हैं। खुदा ने आदम से कहा, मेरा रास्ता या वो शारा, और आदम ने कहा वो शाहरा, और तब से हम उसी पर हैं। वो हमें यहां तक लाया, हत्ता कि खुदा ने वापस हमें अपने पास लाने का रास्ता मुहैया किया। लेकिन फिर एक और सवाल था जो बाइबल पूछती है, और इस बार यह खुदा की तरफ से नहीं पूछा गया, यस्सु की तरफ से नहीं पूछा गया, यह अय्यूब की तरफ से पूछा गया। अय्यूब याद है ना, हम अय्यूब के सबर की बात करते हैं। अय्यूब 14वें बाब की 14वीं आयत में अय्यूब एक सवाल पूछता है, बड़ा अहम सवाल। अगर आदमी मर जाए तो क्या वो फिर जिएगा? और खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान से आया और इंसान बना और सलीब पर मुआ और फिर जिंदा हुआ, वो अय्यूब से कह रहा था, अय्यूब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन मैं लफ्जी तौर पर जवाब नहीं देता, मैं जमीन पर आ रहा हूं, सलीब पर मरने जा रहा हूं, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए फिर जिंदा हो रहा हूं, और जवाब है हां। जब आदमी मर जाए तो वो दोबारा जिंदा होगा। कुछ अरसा पहले मैं एक खातून से बात कर रहा था, बड़ी अच्छी खातून थी, और उसने मुझसे कहा मैं मरने से बहुत डरती हूं। और उसने कहा मैं इस मौजू से बचने के लिए सब कुछ करती हूं। उसने कहा मैं उस नामालूम घड़ी से इतनी खौफजदा हूं कि मैंने खुद को कायल कर लिया है कि एक बार मर गई तो मर गई, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुने मैंने उससे क्या कहा। मैंने कहा तुम्हारे खौफ का जवाज है, यकीन जानो इसका जवाज है, क्योंकि खुदा ने हमें इसलिए तखलीक नहीं किया कि मौत पर खत्म हो जाएं। खुदा ने हमें इसलिए बनाया कि हमेशा जिंदा रहें। हमारे बदन मर जाएंगे लेकिन हमारी रूहें गैर फानी हैं, और हमारी रूहें दो में से सिर्फ एक जगह पर जा सकती हैं, यीशु के साथ फिरदौस में या इब्लीस के साथ दोजख में। भले आपका कोई भी फिरका हो, भले आपका कोई भी मजहब हो, भले आपके कुछ भी अकायद हो, भले आपके कुछ भी अमाल हो, सिर्फ यीशु आपको उधर से इधर ले जा सकता है। इस जिंदगी में खुदा ने हमें मौका दिया है कि इंतखाब करें, और इस जिंदगी में हमारा इंतखाब हमारी मंजिल का तायुन करता है। जो इंतखाब हम यहां पर करते हैं वो हमारी अबदी मंजिल का तायुन करेगा। जो इंतखाब हम यहां करते हैं वो तायुन करता है कि हम खौफ में जिंदा रहें या शादमानी के तजर्बात में। तो जवाब क्या है अय्यूब के सवाल का? जवाब क्या है? सिर्फ यस्सु ने ही सवाल का जवाब दिया। और जब यस्सु मसीह आसमान से आया, सलीब पर मुआ और तीसरे दिन जी उठा, तो उसने सवाल का जवाब दिया, सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि अमली तौर पर, जहां सैकड़ों लोग मौजूद थे जो उसके जी उठने के चश्मदीद गवाह थे और जिंदा मसीह को अपनी आंखों से देखा था, और जो उन्होंने देखा उसके लिए मरने को तैयार थे। जिन्होंने जिंदा हुए मसीह को देखा, उन्होंने अय्यूब के सवाल के जवाब के तौर पर उसे मुर्दों से जिंदा होते देखा। उसका जी उठना कहता है हां अय्यूब, हर इंसान दोबारा जिंदा होगा। हां अय्यूब, हर इंसान अबदी तौर पर जिंदा रहेगा। हां अय्यूब, हर इंसान का दो में से एक जगह अंजाम होगा। जो मुझे वापस उसी अहम तरीन सवाल पर ले जाता है जिसके साथ मैंने शुरू किया था। और अगर आदमी सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा? यीशु ये सवाल पूछता है क्योंकि वो जानता है कि हमारी जाने अबदी हैं, कि हमारी जाने गैर फानी हैं। एक वक्त था जब आप नहीं थे, लेकिन ऐसा कोई वक्त ना होगा जब आप नहीं होंगे। अब से लाखों साल आप यीशु के साथ फिरदौस में गुजारेंगे या इब्लीस के साथ अज़ियत में। आपका अबदी वजूद यकीनी है। सवाल यह है आप ये कहां गुजारेंगे? आपको समझना है जो यीशु यहां पूछता है, वो यहां क्या कहता है। वो कह रहा है कि जिस्म के नुकसान से, जान का नुकसान ज्यादा संजीदा मामला है और इसलिए सिर्फ यसु ही यह सवाल पूछ सकता है, क्योंकि कोई भी यसु से बढ़कर आपको प्यार नहीं कर सकता। और वो कह रहा है, अगर तुम ये सब चीजें ले लो तो तुम्हें क्या फायदा होगा, तुम्हारे कीमती नजरियात, कीमती फलसफा, कीमती मुहर्रकात, अगर ये सब उसके खिलाफ हो जो खुदा करना चाहता है। जवाब ये नहीं कि कुछ नहीं, कुछ नहीं शायद कुछ हो, लेकिन जवाब है मुकम्मल तबाही, अब्दियत खुदा के बगैर। मेरे साथ जरा सोचे, मैं चाहता हूं गौर करें, खुदा जो सूरज से कहता है सुबह तलू हो, खुदा जो बारिश भेजता है कि घास और फसलें बढ़े, खुदा जो अपनी खूबसूरत तखलीक जमीन को कायम रखता है, आप जरा सोचें, आप ऐसी जगह हो जहां ये सब कुछ ना हो, उनमें से कुछ भी ना हो, जरा सोचें, क्योंकि गैर मसीही अब्दियत कुछ इसी तरह की है, ये कुछ ऐसी ही है। जब आप निजात के मंसूबे को रद्द करते हैं तो आप खुद को इंतहाई तारीकी, बला की तन्हाई और अंधे कुएं के सपुर्द करते हैं। लेकिन सुने, एक अच्छी खबर है, वो अपनी बाहें फैलाए हुए आपसे कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मेरे पास आओ, मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए सलीब पर जान दी, उसने बचने की एक राह दी, और सिर्फ यही राह मुझे काबिले कबूल है, बाकी सबकी कोशिश कर देखो। ये अजीम दावत है, क्या आप कबूल करेंगे, क्या आप इसे पाएंगे?
This program has been a presentation of Leading the Way with Dr. Michael Youssef.